176 and 177.
Oh, 176, 177. Is that okay? Sorry. Okay. All right. 176. What's that, anything on the board that says 177? Okay. So I'll read 176 first. Krishna nam spuri muki mani nitra Krishna toma keta drupa deki ridaya satrishna. Translation: Brahmananda Bharati continued, since I have seen you, I have been feeling Lord Krishna's presence in my mind and have been seeing him before my eyes. I now want to chant the holy name of Lord Krishna. Over and above this, within my heart, I consider you to be Krishna, and I am therefore very eager to serve you.
अनुवाद ब्रह्मानंद भारती कहते हैं, जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं अपने मन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूं और उन्हें अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। अब मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त मैं अपने हृदय में आपको कृष्ण मानता हूं, अतएव मैं आपकी सेवा करने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं।
Okay, 177 on the board here. Bilva Mangala Kaila Yaiche Dasha Apanara.
Bilva Mangala Kaila Yaiche Dasha Apanara.
Ihandeki Se Dasha Haila Amara.
Ihandeki Se Dasha Haila
Bilva Mangala Kaila Yaiche Dasha Apanara.
Bilva Mangala Kaila Yaiche Dasha Apanara.
Ihandeki Se Dasha Haila Amara.
Ihandeki Se Dasha Haila Amara.
Bilva Mangala Kaila Yaiche Dasha Apanara.
Bilva Mangala Kaila Yaiche Dasha Apanara.
Ihandeki Se Dasha Haila Amara.
Ihandeki Se Dasha Haila Amara. Bilvam
Bilva Mangala. You go ahead. You read the word.
Bilva Mangala. Bilva Mangal. Kaila. Kia. Yache. Jaisi. Dasha. Dasha. Apanara. Apni. Iha. Yaha. Dekhi. Main dekhta hun. Sei Dasha. Vahi Dasha. Haila. Ho gai. Amara, Mary. अनुवाद बिल्व मंगल ठाकुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार के लिए अपनी निर्विशेष अनुभूति त्याग दी। अब मैं देख रहा हूं कि मेरी दशा भी उन्हीं जैसी हो रही है क्योंकि ये अब बदल चुकी है। तात्पर्य, प्रारंभिक जीवन में बिल्व मंगल ठाकुर निर्विशेष अद्वैतवादी थे और वे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का ध्यान किया करते थे। बाद में वे भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। उनके इस परिवर्तन की व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है जो भक्ति रसामृत सिंधु से उद्धृत है। कभी कभी भक्त क्रमशः निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने के बाद भगवान अर्थात परम पुरुष के साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करता है। ऐसे भक्त की स्थिति का वर्णन प्रबोधानंद सरस्वती ने चैतन्य चंद्रामृत 5 में किया है। कैवल्यम नरकायते त्रिदश पुराकाश पुष्पायते दुर्दान्त दिन्द्रिया काल सर्पटली प्रोत्खांत दृष्ट्यांत विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्र ददिष्ट किटायते यत् कारुण्य कटाक्षवय भववताम तम गौरमेव स्तुतमा। भक्त को कैवल्य अर्थात ब्रह्म ज्योति से एकाकार होना नरक जैसा लगता है। स्वर्ग लोक उसे मायाजाल जैसा प्रतीत होता है। योगी इंद्रिय निग्रह के लिए ध्यान करते हैं किंतु भक्त को इंद्रियां दंत रहित सर्पों जैसी लगती हैं। भक्त को अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करनी पड़ती क्योंकि इसकी इंद्रियां पहले से भगवान की सेवा में लगी हुई होती हैं। फलतः उसके इंद्रियों द्वारा सर्पों की तरह कार्य करने की संभावना नहीं रहती। भौतिक अवस्था में इंद्रियां विषधर सर्पों जैसी प्रबल होती हैं किंतु जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं तब वह सर्प की तरह रह जाती हैं जिसके दांत तोड़ दिए गए हैं। अतः वह भक्त के लिए खतरनाक नहीं रह जाती। भक्त के लिए सारा जगत वैकुंठ की प्रतिकृति होता है क्योंकि उसे कोई चिंता नहीं सताती। वे प्रत्येक वस्तु को कृष्ण ही समझता है और उसका भोग स्वयं नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि उसे ब्रह्मा या इंद्र के पद की भी इच्छा नहीं होती। वह हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देने के लिए इच्छुक रहता है। अतएव उसके सामने कोई समस्या ही नहीं उठती। वह अपनी मूल वैधानिक अवस्था में स्थित रहता है। ये तभी संभव है जब उस पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा दृष्टि हो। चैतन्य चंद्रामृत में इसी सिद्धांत से संबंधित अनेक श्लोक हैं। धिक्कुर्वन्ति च ब्रह्म योगी विदुषस्तम गौर चंद्रमा नुमः तावत् ब्रह्म कथा विमुक्ति पदवी तावन् तिक्ति भवेत् तावच्चापि विश्रंखलत्वमयते नो लोक वेद स्थिति तावच्चिस्त्रविदां मिथा कलकलो नाना बहिर्वत मसु श्री चैतन्य पदाम्बुज प्रिय जन यावन दिगोचर गौरश्चौर सकल महरत कोपी में तीव्र वीर्यः। भक्त को निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा अच्छी नहीं लगती। शास्त्रों के तथाकथित विधान भी उसके लिए व्यर्थ हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो शास्त्रों पर वाद विवाद करते हैं किंतु भक्त के लिए ऐसी चर्चाएं मात्र कान फाड़ू शोर के समान हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं।
ओम अज्ञानति मरंदस्या। So in this section of Chaitanya Charitamrita, we're hearing how Brahmananda Bharati had come to Jagannath Puri to meet Lord Chaitanya.
Chaitanya Charitamrita ke is bhag mein hum dekh rahe hain kis prakar se Brahmananda Bharati Mahaprabhu se milne ke liye Jagannath Puri aaye hain.
And when Lord Chaitanya heard Brahmananda Bharati wanted to see him, he said, I should come and see him. He is like my spiritual master.
Aur jab Mahaprabhu ne suna ki ब्रह्मानंद भारती उनसे मिलना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए, वो मेरे आध्यात्मिक गुरु के समान है। ये उनका कर्तव्य नहीं है कि वो मुझे आके मेरे दर्शन करें, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं जाके उनके दर्शन करूं।
So Lord Chaitanya was taking a very humble position, like disciple.
तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही विनम्र पर अपने आप को विनम्र स्थिति में डाल रहे थे.
But then when Lord Chaitanya came there and saw Brahmananda Bharati, then he said, I don't see Brahmananda Bharati. Where is Brahmananda Bharati?
परंतु जब वो गए ब्रह्मानंद भारती से मिलने के लिए तो वहां पहुंच के उन्होंने कहा कहां है ब्रह्मानंद भारती, मैं उनको नहीं देख पा रहा.
And Brahmananda Bharati understood that Lord Chaitanya didn't want to recognize him.
और महाप्रभु का ऐसे व्यवहार देख के ब्रह्मानंद भारती समझ गए कि महाप्रभु उनको पहचानना नहीं चाहते.
Brahmananda Bharati was wearing a deer skin and Lord Chaitanya did not approve of people dressing in deer skin.
तो ब्रह्मानंद भारती मृग छाल पहने हुए थे और महाप्रभु ने ऐसे लोगों की स्वीकृति नहीं दी जो मृग छाल में घूमते हैं.
Now in Manusamhita describes that people in the renounced order of life, they should either dress in the bark of trees or in the deer skin.
Manusamhita में वर्णन आता है कि जो सन्यासी हैं उनको या तो वृक्ष की छाल या मृग छाल पहननी चाहिए.
However, Lord Chaitanya considered this just to be a display of false ego. It was just simply some false pride which allows people to dress in such a manner.
परंतु महाप्रभु इसको सिर्फ एक झूठे अहंकार या घमंड की प्रस्तुति देखते थे.
So, Brahmananda Bharati understood Lord Chaitanya did not approve of him dressing in the deer skin.
तो ब्रह्मानंद भारती समझ गए कि महाप्रभु ने इस बात की स्वीकृति उन्हें नहीं दी कि वो मृग छाल पहने.
And he immediately decided he would change his dress. And Lord Chaitanya was very pleased.
और उन्होंने तुरंत चुनाव किया कि मैं तुरंत वेशभूषा बदल दूंगा. और ऐसा देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए.
And Lord Chaitanya even personally gave him the dress of the sannyasi.
और महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से सन्यास आश्रम की जो वेशभूषा है उनको प्रदान की.
So then there was some discussion that there was some little debate, a little kind of philosophical discussion. Brahmananda Bharati was describing about the position of Lord Chaitanya to be like Lord Jagannath.
तो उसके बाद उनके बीच में दर्शन की चर्चा हुई और ब्रह्मानंद भारती व्याख्या कर रहे हैं किस प्रकार से महाप्रभु जगन्नाथ के समान हैं.
And Brahmananda Bharati was comparing, he said, Lord Chaitanya is the moving Jagannath. Jagannath, Lord Jagannath stays in one place, but Lord Chaitanya, he's moving.
और उन्होंने उनकी तुलना की महाप्रभु की ऐसे जगन्नाथ से जो हर जगह चल रहे हैं.
So, in this, Brahmananda Bharati was saying, you know, you're both the Brahman.
और ब्रह्मानंद भारती कह रहे हैं कि आप ब्रह्मान भी हैं.
So Lord Chaitanya was saying, well, of course, Lord Chaitanya was a little bit, he didn't want to say, I'm actually Jagannath, of course, but he wanted to explain that there's a difference. There's the Brahman and there's the Supreme Brahman. This Brahmananda Bharati was something of an impersonalist.
तो महाप्रभु इस बात को ऐसे झिझक रहे थे इस बात को स्वीकार करने में कि हाँ वही जगन्नाथ है. तो उन्होंने उनको समझाना शुरू किया कि एक तो ब्रह्मान है और एक परम ब्रह्मा है.
Now, क्योंकि
ब्रह्मानंद भारती उनका जो झुकाव था निर्विशेष की तरफ था.
Now, Lord Chaitanya had also taken sannyas from Keshava Bharati.
और चैतन्य महाप्रभु ने भी सन्यास लिया था केशव भारती से.
But Lord Chaitanya didn't take the sannyasi name. He didn't take that name Bharati.
परंतु महाप्रभु ने वो नाम ग्रहण नहीं किया था भारती का.
He kept his brahmachari name Krishna Chaitanya.
उन्होंने ब्रह्मचारी नाम स्वीकार किया था कृष्ण चैतन्य.
But he felt some affection for Brahmananda Bharati.
परंतु उनका स्नेह भाव था ब्रह्मानंद भारती की तरफ.
एंड ही वांटेड टू इंस्ट्रक्ट हिम दैट देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ पर ब्रह्मान एंड देयर इज अ individual spark of Brahman, which is the living entities.
तो वो उनको निर्देश देना चाहते थे कि एक है परम ब्रह्मा और एक है ब्रह्मा जो अलग-अलग जीवात्मा हैं.
So the impersonalists, those people from the Advaita mark, they have difficulty to understand this. They think it's all one, it's only Brahman.
तो निर्विशेष जो हैं, जो अद्वैतवादी हैं, उनको ये समझने में कठिनाई होती है. उन्हें लगता है कि परम ब्रह्म और ब्रह्म एक ही हैं, सब कुछ एक ही है.
They're not able to distinguish between the Supreme Lord and the living entity.
तो वो परम भगवान और जीव आत्मा में भेद नहीं कर पाते.
But in Bhagavad Gita, Arjuna explained param brahm, param dham, pavitram, paramambhavan. In the Bhagavad Gita, Arjuna understood Krishna's position and he glorifies Krishna as being parabrahman, the supreme Brahman. He's not just simply Brahman, but he's parabrahman.
और भगवत गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण को प्रार्थनाएं अर्पित करते में उनको कहते हैं परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम. तो उनको परम ब्रह्मा के नाम से संबोधित करते हैं. वो कृष्ण की जो वास्तविक स्थिति है उसको समझते हैं.
So there's some discussion there between Brahmananda Bharati and Lord Chaitanya, and they asked Sarvabhauma Bhattacharya to mediate and to give the decision who was right.
तो फिर उनके बीच में चर्चा होती है ब्रह्मानंद भारती और महाप्रभु के बीच में, और वहां पे वो सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं कि आप इस चर्चा में कौन सही है और कौन गलत है, इसका चुनाव आप कीजिए.
And Brahmananda Bharati glorifies Lord Chaitanya. He glorifies Lord Chaitanya that Lord Chaitanya has taken away my false pride. And he has purified me. So this is proof that Lord Chaitanya is all-pervading and all-powerful.
तो ब्रह्मानंद भारती बोलते हैं किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने मेरा झूठा अहंकार को तोड़ा है, और ये प्रमाण है कि वह सर्वव्यापक हैं और सर्वशक्तिमान हैं और मैं उनके अधीन हूँ.
And then he quotes also the verse from Vishnu Sahasranam that Suvarna Varna Himango, that where it's described about the bodily complexion of the Lord and how he will renounce later in life and how he's always peaceful and equipoised and chanting the holy name.
और फिर वो महाभारत के विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत से श्लोक उद्धृत करते हैं सुवर्ण वर्ण हे मांगो, जिसपे वो बता रहे हैं कि कैसे उनका जो शरीर है वो सुनहला है, पिघले सोने अंग जैसा है, और संन्यास के बाद महाप्रभु सदैव संतुलित रहते हैं.
And Brahmananda says, all the symptoms which are described there in the Vishnu Sahasranam, they are all visible in the body of Lord Chaitanya Mahaprabhu.
और फिर वो कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत के श्लोक में उल्लिखित सारे लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट हैं.
And then Sarvabhauma Bhattacharya then says, yes, I think Brahmananda Bharati is right. He's the winner.
और ये सुन के सार्वभौम भट्टाचार्य अपना निर्णय कहते हैं, हे ब्रह्मानंद भारती, मैं देख रहा हूं कि आप विजयी हो.
So Lord Chaitanya says, all right, I accept whatever you say, whatever Brahmananda Bharati said, it's all right, I accept, because he's my guru, he's my spiritual, he's on the level of my spiritual master, and I'm his disciple. So disciple's duty is to be defeated by the guru.
तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उत्तर दिया कि ब्रह्मानंद भारती ने जो कुछ कहा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं इनके शिष्य हूँ और ये मेरे गुरु के रूप में हैं, उस पदवी में हैं, और एक शिष्य का कर्तव्य है गुरु से पराजित होना.
Just like Srila Prabhupada would sometimes debate with his disciples, and sometimes he would be a personalist and sometimes he would be an impersonalist. But Srila Prabhupada would always win.
जैसे कि श्रीला प्रभुपाद अक्सर अपने शिष्यों के साथ ये चर्चा किया करते थे, कभी वो पर्सनलिस्ट का रोल ले लेते थे जो परम भगवान की पूजा करता है, कभी वो निर्विशेष की स्थान ले लेते थे, परंतु दोनों ही केस में उस चर्चा में प्रभुपाद ही विजय हो करते थे.
But then Brahmananda Bharati said, no, but there's another reason why you're defeated. And then he said, it's the nature of the Lord to like to be defeated by his devotee.
तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक और कारण है कि जिसकी वजह से आप पराजित हुए हैं. क्या कारण है? कि आपका स्वाभाविक गुण है कि आप अपने भक्तों के हाथ अपनी पराजय स्वीकार करते हैं.
Just like Lord Krishna had to break his promise that he promised, I'm not going to fight, I won't fight, but Bhishma forced him to break his promise.
जैसे कि भगवान कृष्ण ने अपना वादा खुद तोड़ दिया कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, परंतु भीष्म देव ने उनको मजबूर कर दिया अपने इस वादे को तोड़ने के लिए.
So sometimes the Lord takes pleasure in being defeated by his devotees.
तो कभी कभार भगवान इसमें बहुत आनंद लेते हैं अपने भक्तों से पराजय स्वीकार करके.
But then he said, but there's one more reason also, and I want you to hear about this carefully. He said, and that is that I've been meditating on the impersonal Brahman from my birth. Since seeing Lord Chaitanya, now I am experiencing Krishna.
और उन्होंने कहा इसके साथ एक कारण और है, और उन्होंने बताया कि मैं जन्म से ही निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूं, किंतु जब से मैंने आपके दर्शन किए हैं तब से मुझे कृष्ण की पूरी पूरी अनुभूति हो गई है.
And he goes, since I have seen you, I'm feeling Krishna's presence in my mind. And I'm seeing him also, I'm seeing Krishna before my eyes. And I want to chant even Krishna's name now.
और उन्होंने कहा कि जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं अपने मन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूं और उन्हें अपनी आंखों के समक्ष देख रहा हूं, और अब मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहता हूं.
And then he said, I consider you, Lord, speaking to Lord Chaitanya, I consider you to be Krishna, and I'm therefore feeling very eager to serve you.
और फिर वो महाप्रभु को कहते हैं कि मैं अपने हृदय में आपको कृष्ण मानता हूं, और इसलिए मैं आपकी सेवा करने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं.
And then Brahmananda goes on speaking. He says, and he talks about Bilvamango Thakur. And says Bilvamango Thakur also gave up his impersonal realization to become a devotee.
और फिर वो बिल मंगल ठाकुर का उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने निर्विशेष अनुभूति को त्याग दिया परम पुरुषोत्तम भगवान का भक्त बनने के लिए.
And he said, my condition is similar to Bilvamango. He said, I'm the same way. I'm giving up my attraction to the impersonal Brahman, and I just want to be a devotee.
और फिर वो कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि कैसे मेरी दशा भी बिल मंगल ठाकुर जैसी है. मैं भी निर्विशेष अनुभूति त्याग रहा हूँ, और मेरा पूरा का पूरा जो आकर्षण है अब आपके लिए है.
So Srila Prabhupada explains in the purport how sometimes people go through these different progression of realizations. That in the beginning they're impersonalists. When they first come to some spiritual realization, we're thinking it's all one, and we're thinking I'm Brahman, or I can become the Brahman, I can become one with the Supreme. It's attractive to people.
और श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि किस प्रकार से एक साधक इन साक्षात्कार की अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है. शुरू में वो बहुत आकर्षित रहता है कभी कभार निर्विशेष ब्रह्म में बनने, उसमें मिलने के लिए.
Even I was an impersonalist before I became a devotee. When I first came to the temple, they asked me, do you know who God is? I said, I'm God, and you're God, we're all God.
तो महाराज कह रहे कि
I thought, I'm right.
महाराज बता रहे हैं कि भक्त बनने से पहले वो खुद निर्विशेष पे विश्वास रखते थे, कि जब वो पहली बार मंदिर आए और किसी ने उनसे पूछा आप जानते हैं भगवान के विषय में, महाराज ने उत्तर दिया हाँ मैं भगवान हूँ, आप भगवान हो, हर कोई भगवान है.
So he laughed at me. He said, "You're God. What kind of God are you?" Yeah. He said, "Can you lift a house? Can you do anything? What can you do to prove you're God?"
और जब भक्त ने महाराज से ये उत्तर सुना तो वो हंसने लगा. उन्होंने कहा आप किस प्रकार के भगवान हो, आप कुछ कर सकते हो भगवान जैसा, कोई घर उठा सकते हो, कोई लीला कर सकते हो?
So I was defeated immediately, and I understood I had to learn from the devotees.
तो महाराज कह रहे हैं मैं उसी क्षण पराजित हो गया था और मुझे समझ आ गया था कि मुझे भक्तों से सीखना है.
So sometimes we see people come like that. We become, you know, impersonal philosophy is very easy for people to understand. You know, it's attractive to people to think you can become God. We can become one with the Supreme. We like the idea, oneness. We think, oh, this sounds very nice. This is really good. I like this. I want to be one.
तो कई बार लोगों के लिए निर्विशेष ब्रह्म का दर्शन समझना बड़ा आसान होता है कि सब कुछ एक है और उनको ये दर्शन बड़ा आकर्षक लगता है.
But there's something higher than that. You see, in the something higher than that is to understand there's oneness and at the same time there's also difference. And this is the teachings given by Lord Chaitanya Mahaprabhu.
परंतु इससे भी ऊंचा महान दर्शन है ये समझना कि हम कैसे एक हैं और साथ ही साथ कैसे अलग भी हैं. और ये दर्शन प्रस्तुत किया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने.
So from the impersonal realization we can go on to understand more about the Paramatma and then go on to understand even more about the Bhagavan.
तो निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से प्रगति करके हम परमात्मा साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं और वहां से प्रगति करके हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं.
Now, of course, there is some pleasure in realizing the impersonal Brahman. There is some pleasure to understand I'm not the body. Oh, what a relief. I'm so glad to know I'm not the body. We feel some pleasure in that.
तो कुछ प्रकार का आनंद निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार में भी होता है. ये साक्षात्कार होना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ. तो ये साक्षात्कार ही अपने आप में इतना आनंद प्रदान करने वाला होता है.
But we have to go on from there, not just only stop there, understanding Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. You can recite Aham Brahmasmi, but it's not going to give you the real bliss. It's not going to give us the full experience of Brahman.
परंतु हमें इसी साक्षात्कार पे रुक नहीं जाना चाहिए. अहम ब्रह्मास्मि इसके आगे भी बढ़ना चाहिए.
We have to go on from the Brahman to understand what is our position, that I am Brahman, what is my duty, what should I be doing now.
तो ये साक्षात्कार होना कि मैं ब्रह्मा हूं, शरीर से अलग हूं, तो मेरा क्या कर्तव्य है.
The impersonalists, they're thinking, I am Brahman, I won't do anything. I'm not the body, so I won't do anything. And they want to give up everything. Stop all activities. Don't see anything. Don't say anything. Don't do anything.
तो फिर जो ये निर्विशेष लोग होते हैं, तो उनका क्या समझ होती है कि मैं ब्रह्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो मैं कुछ भी कार्य नहीं करूँगा.
But we should understand that. On the platform of Brahman, there are also activities. There are spiritual activities. We have to learn what are spiritual activities. How does the soul act? If we know we're not the body, if we know we're a soul, we should learn what are proper activities for a soul.
तो हमें ये समझना चाहिए कि ब्रह्म के स्तर पे भी कार्य होते हैं. तो वहाँ पे क्या कार्य हैं ये सीखना चाहिए.
So the impersonalists, the Mayavadis, they retire, go to the Himalayas to realize the Brahman. But then when they come back after realizing the Brahman, they don't know what to do. Instead, they take up social activities, welfare work, they open a school or they open a hospital. And they just simply engage in bodily activities. They have no knowledge of what are real spiritual activities.
तो निर्विशेष ब्रह्मवादी ये सब लोग जाते हैं हिमालय पे ध्यान लगाने के लिए और फिर जब वो लौट के आते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हम कैसे अपने आप को व्यस्त करें. और इस प्रकार से वो सामाजिक कुछ कार्यों में लग जाते हैं, कुछ हॉस्पिटल खोलते हैं, कुछ स्कूल खोलते हैं, इस प्रकार से.
You may say, oh, it's very good, we need hospitals, we need schools. Yeah, but that's material. It's not spiritual. We have to understand there are spiritual activities.
तो आप कहेंगे कि हाँ ये तो अच्छे कार्य हैं, हमें चाहिए स्कूल, चाहिए हॉस्पिटल, चाहिए. परंतु ये समझना चाहिए कि ये सारे कार्य भौतिक स्तर पे हैं और आध्यात्मिक स्तर के जो कार्यकलाप हैं वो भी होते हैं. तो ये सीखना चाहिए कि वो क्या कार्य हैं।
The one who actually understands Brahman, then they will engage in the service of the Para Brahman. They will take up spiritual activities, beginning with hearing and chanting.
तो जो उनको साक्षात्कार होता है, ब्रह्म साक्षात्कार होता है, तो वो परम ब्रह्म की सेवा में अपने आप को अनुरुक्त करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है श्रवणम से।
There is some tiny drop of pleasure in realizing the impersonal Brahman. But that pleasure is just like a drop compared to the ocean of pleasure which is available when one engages in devotional service.
तो निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से जो आनंद की अनुभूति होती है उसकी तुलना की गई है सिर्फ एक बूंद से, और भक्ति का आनंद जो है वो एक महासागर के समान है।
Now somebody said recently, I think it was even just yesterday, somebody said, I'm not feeling any pleasure in my devotional service. I said, well, that's your problem. That means you're not doing pure devotional service.
तो अक्सर लोग कहते हैं, जैसे महाराज कह रहे हैं, कल ही मुझे कोई भक्त कह रहा था कि मेरे को आनंद की अनुभूति नहीं हो रही भक्ति जीवन में। तो महाराज कह रहे हैं, आपकी समस्या है क्योंकि आप शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं।
We have to give up our material desires and material attachments. We have to engage in service to Krishna for the satisfaction of Krishna.
तो भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्ति को त्याग कर भगवान कृष्ण की सेवा में लगना, भगवान कृष्ण की संतुष्टता के लिए।
Pure devotional service is ahaitaki, apratihata. It's done without motivation. It's done uninterruptedly. Then we can experience the real bliss.
तो शुद्ध भक्ति होती है अहेतु की अप्रतिहता, उसको किया जाता है बिना किसी हेतु के और बिना किसी रुकावट के। तो जब इस प्रकार से भक्ति की जाएगी तब हमें असली आनंद की अनुभूति होगी।
As we surrender to Krishna, Krishna rewards us accordingly. If we want to experience the real taste of devotional service, we have to fully give ourselves to Krishna.
तो जिस मात्रा में हम भगवान कृष्ण के शरणागत होते हैं उसी मात्रा में भगवान कृष्ण हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। तो परम आनंद प्राप्त करने के लिए पूर्ण शरणागत हो जाना चाहिए भगवान कृष्ण को।
So sometimes people, you know, maybe some of us, we came immediately to Krishna consciousness, we took up bhakti yoga, and we never bothered about realizing the Brahman or Paramatma. We're just simply doing bhakti yoga.
तो आप में से कईयों का अनुभव होगा कि वो सीधा कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़े और उनको निर्विशेष परमानंद से कुछ लेना देना नहीं है, उनका सारा ध्यान है भगवान कृष्ण पर केंद्रित है।
So one who takes up bhakti yoga, they will not be bereft. They will also realize the Brahman. They will also realize Paramatma. It's all included within realization of Bhagavan.
तो जो भक्ति योग में व्यस्त हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने जीवन में कुछ छोड़ रहे हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार के साथ वो ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार ये साथ में स्वतः ही हो जाता है।
Just like if one has 1 crore rupees, then it means they also have 10 lakhs, they also have 50 lakhs. It's all included within 1 crore.
अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो उसके पास 10 लाख भी हैं और 50 लाख भी हैं। वो 1 करोड़ के अंदर सम्मिलित है।
So one who has realized the Bhagavan, one who understands the full feature of the Lord as Bhagavan, they also realize Brahman and Paramatma. It's all included within the realization of Bhagavan.
तो जो परम भगवान का साक्षात्कार कर रहे हैं, तो वो ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार उसके अंदर सम्मिलित है।
One should not think, oh, I'm doing bhakti yoga, I should first go and realize the Brahman, and then I will realize Paramatma. No, that's a waste of time. That is like walking up the stairs when you can go in the lift to get to the foot.
तो किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं तो पहले जाके मैं ब्रह्म साक्षात्कार करूंगा फिर परमात्मा साक्षात्कार करूंगा। नहीं, ये बिल्कुल समय व्यर्थ गंवाने के समान है। ये उसी प्रकार से है कि आप सीढ़ी पे चढ़ के जा रहे हो जब लिफ्ट की सुविधा आपके पास उपलब्ध है।
Why waste our time? Your friend is on the 20th floor. You're going to walk up the stairs.
आपका मित्र है 20वें माले पे है और आप सीढ़ी चढ़ के क्यों जाना चाहते हो?
So why we waste our time to realize the Brahman? just simply makes the heart hard, and we just simply lose our feelings and become impersonal. And then it makes our devotional service more difficult.
तो भ्रम साक्षात्कार करने में समय व्यर्थ क्यों गवाएं? इससे हृदय भी कठोर बनता है, समय व्यर्थ जाता है.
And realization of the Brahman means avishuddha buddhaya, that their impure intelligence, they have not understood the actual nature of Brahman.
और उससे हमारे जो भगवान कृष्ण के प्रति feelings हैं, वो भी कम होती हैं. तो इस प्रकार से, sorry, my last line.
They have not understood the actual what is Brahman.
तो वो वास्तविक में समझ नहीं पाते क्या ब्रह्मा है.
That the Brahman is simply the effulgence coming from the body of the Supreme Lord Krishna.
वो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के शरीर से जो कांति आ रही है, वो ही है ब्रह्मज्योति.
In the Bhagavad Gita, Lord Krishna said, "Brahmano hi pratistaham." I am the basis of the Brahman. He doesn't say the Brahman is the basis of me. Krishna says he is the basis of Brahman.
और भगवान कृष्ण भगवत गीता में ये घोषणा करते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति का आधार मैं ही हूं. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरा आधार ब्रह्म ज्योति है. नहीं, ब्रह्म ज्योति के आधार वो खुद हैं.
Some people think when Krishna comes, oh, he is the form of the Brahman. The Brahman has come.
कई लोग सोचते हैं कि जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं कि वो ब्रह्म ज्योति से अवतार लेके आए हैं.
That is Maya. That is Mayavada. That is wrong. That is the biggest illusion. That is offensive to Lord Krishna.
तो ये मायावाद है. ये सबसे बड़ा भ्रम है और भगवान कृष्ण के प्रति अपराध है.
Lord Krishna himself is the source of the Brahman. That is the effulgence coming from his body.
भगवान कृष्ण ही आधार हैं उस ब्रह्म ज्योति के. ये उनके शरीर से जो निकल रहा वो तेज कांति है, वो है.
And this is described also for us in the Upanishads. If you read Sri Upanishad, it's stated there, Haranmayena patrena satyasyapitam mukham. That the devotee is praying to the Lord, kindly remove your dazzling effulgence and exhibit your form to your devotee. So that dazzling effulgence, that is the Brahma Jyoti. And that is just simply the impersonal feature of Lord Krishna. It is simply the energy. That energy has a source. It comes from the person. And that personality is none other than the personality of Godhead, Swayam Bhagavan, Lord Sri Krishna.
तो वो एक शक्ति है और उस शक्ति का एक स्रोत है और वो स्रोत है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण.
So Brahmananda Bharati is describing here that he was an impersonalist, but since he saw Lord Chaitanya, he's been inspired to serve Krishna and to chant the holy name. In other words, he's awakened devotion.
तो यहाँ पे ब्रह्मानंद भारती व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे वो निर्विशेषवादी थे, परंतु जैसे ही उन्होंने भगवान महाप्रभु के दर्शन किया तो वो भक्ति में लग गए.
So Brahmananda Bharati is very lucky. He is an impersonalist who became fortunate. He got the mercy of Lord Chaitanya. He could become a devotee. Not so many impersonalists are so fortunate.
तो ब्रह्मानंद भारती बहुत ही सौभाग्यशाली थे कि उन्होंने महाप्रभु के दर्शन किए और फिर वो भक्त में परिवर्तित हो गए. ऐसा बहुत सारे उदाहरण नहीं है.
Now the impersonalists are also transcendentalists. They're detached from the material world, but their situation, their destination is not secure. Their liberation into the Brahma Jyoti is just theoretical. They cannot maintain, they cannot remain there in the Brahma Jyoti.
तो जो निर्विशेषवादी हैं, वो भी अध्यात्मिकता में जुड़े हुए हैं. उनका जो लक्ष्य है दिव्य है, वो इस भौतिक संसार से उनका वैराग्य है, परंतु जो उनका लक्ष्य है वो सुरक्षित नहीं है कि वो मुक्ति लेके उस ब्रह्म ज्योति में मिलते हैं, परंतु वो वापस गिरने की संभावना बनी रहती है.
Right? Impersonalists often preach Brahman, Brahman Satyam Jagat Mitya. This world is all false, all illusion. Only the Brahman is real. And they're thinking to go to the Brahman. They enter into that Brahman, but they cannot remain there.
तो वो अक्सर ऐसा प्रचार करते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और बताते हैं किस प्रकार से प्रयास करते हैं उस ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए परंतु वहां से फिर उनका पतन होता है वो वहां पे सदैव के लिए नहीं रह पाते
They cannot remain there because there's no activity there. There's no relationships there. There's no variety there. You go to that place, you'll be bored stiff. You'll want to get out quick.
तो वहां पे वो इसलिए उस स्थिति से गिर जाते हैं क्योंकि वहां पे करने के लिए कुछ कार्य नहीं है किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं है किसी प्रकार की वहां पे कोई विविधताएं नहीं है और वहां पे अगर कोई जाता है तुरंत ही बहुत कम समय में पूरा बोर हो जाता है
So impersonalists, they work very hard to enter into that Brahmajyoti, but Aurora Krishna Parampatam Tata Patanti Adon Yadreta Yasmad Angraya. Because of impure intelligence, they fall back into the material world again.
तो इतनी मेहनत करते हैं मुक्ति के लिए और निर्विशेष भ्रम में प्रवेश करने के लिए परंतु कलमश बुद्धि की वजह से पतंती आदा उनका दोबारा पतन होता है
So why work so hard to get just some temporary relief from the material existence?
तो भौतिक अस्तित्व से कुछ समय के लिए कुछ छुटकारा पाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करें
बट फॉर अ डिवोटी इट्स वेरी इजी अ डिवोटी वेरी इजीली गेट्स ट्रांसेंड्स दिस मटेरियल वर्ल्ड बाय सीइंग एवरीथिंग बाय एंगेजिंग एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा
परंतु भक्त के लिए पूरा का पूरा विधि बहुत सरल बन जाता है इस संसार से ऊपर उठना कैसे प्रत्येक वस्तु प्रत्येक चीज को भगवान के संबंध में देखना और उनकी सेवा में व्यक्त लगाना
The impersonalists try very hard to renounce everything, to give up all sense gratification. But for a devotee, it's very easy to give up sense gratification because they simply engage in Krishna's service.
और निर्विशेषवादियों के लिए इंद्रिय संयम करना बहुत कठिन होता है परंतु भक्तों के लिए जितने भी इंद्रिय विषय हैं वो भगवान कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हैं
Example is given here in this verse by Prabodhananda Maharsaraswati. He talks about how the senses are like poison serpents.
और यहाँ पे उदाहरण देते हैं श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती और वो तुलना करते हैं इंद्रियों की विषैले सर्पों के साथ.
So sometimes you get the man. He comes, you know, from. He's got the basket, and in the basket he's got the big cobra, big snake. And he takes it out and he's playing with it, you know, and he lets it go. And oh, snake, we feel afraid. But he's not afraid because he already cut out the teeth. He already cut out the fangs from the snake. He knows the snake cannot bite him.
तो कभी कभार हम देखते हैं एक व्यक्ति आता है, पिटारा खोलता है, उसमें से कोबरा निकलता है. और हर कोई उससे डर रहा होता है. परंतु जो व्यक्ति है, उससे बहुत आराम से खेल रहा होता है. क्यों? क्योंकि उसने उस सर्प के जहरीले दांत है उनको तोड़ दिया होता है निकाल दिया होता है
So the same way a devotee is not afraid of the material world because they simply see everything for an opportunity to do service to Krishna
तो इसलिए जो भक्त है वो भौतिक अस्तित्व से भयभीत नहीं होता क्योंकि वो हर परिस्थिति में एक अवसर देखता है भगवान कृष्ण की सेवा का
Prahlad Maharaj said, I'm not worried about myself. Wherever I go, I can chant the holy name. I can chant the glories of the Lord. I'm worried about all of these other conditioned souls who are just simply serving Maya.
So Prahlad Maharaj apni prarthnaon mein kehte hain ki meri chinta mere khud ke liye nahi hai. Kyunki main kisi bhi jagah jaun, kisi bhi paristhiti mein hoon. Main aapka gudgaan kar sakta hoon. Meri jo chinta hai, in... जीवात्माओं के लिए है जो माया में रक्त है
सो यू गॉट दिस काइंड ऑफ इम्पर्सनलिस्ट ओह आई वांट क्रॉस द ओशन टू क्रॉस द ओशन दैट्स वेरी डेंजरस अ लॉट ऑफ माया ऑन द अदर साइड ऑफ द ओशन बट श्रील प्रभुपाद वेंट एवरीवेयर टू प्रीच द होली नेम ही वाज नॉट अफेक्टेड बाय माया
जो निर्विशेषवादी होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि हाँ हम महासागर पार करके नहीं जाएंगे वहां पे बहुत माया है और बहुत सदैव भयभीत रहते हैं परंतु श्रीला प्रभुपाद ने यात्रा की पूरे विश्व भर में भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का प्रचार करने के लिए.
So the ocean of material existence becomes like the water in the footprint of a calf, becomes very insignificant for a devotee who is engaged in Krishna consciousness.
तो पूरा जो भौतिक महासागर है वो परिवर्तित हो जाता है एक बछड़े के खुर में जितना पानी है उसने छोटे जल के समान.
So Srila Prabhupada is quoting different scriptural verses here in this purport to establish the superiority of bhakti over the impersonal realization.
और श्रीला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इतने सारे श्लोक उदित किए हैं इस बात के सिद्धांत की स्थापना करते हुए कि कैसे जो भक्ति है वो सर्वोच्च है निर्विशेष साक्षात्कार से ऊपर है.
All right, we give the example. Just like when the train first came. Oh, the train's coming. Everybody say, I want to see the train. And somebody, they go to the station and they simply hear the whistle. Or they simply hear, they see the smoke. And they think, oh, that's a train. And they go home.
तो कई लोग होते हैं जो कहते हैं हम रेलगाड़ी के दर्शन करना चाहते हैं. तो जाते हैं स्टेशन पे. और देखते हैं जैसे सिटी बसती है और दूर से जो ट्रेन आ रही होती है उसको धुआं निकल रहा होता है तो उनको देख उसको देख के लगता है कि हाँ यही ट्रेन है इसके दर्शन करके वापस चला जाता है.
The whistle of the train, you know, the smoke of the train, that's only one aspect of the train. Other people, they wait and they see the train come into the station and they see there's a train, there's passengers, there's a driver, they see all the detail of the train.
ट्रेन की सिर्फ सीटी सुन के थोड़ा धुआं देख के ये ट्रेन का एक छोटा सा अंश है जो वहां पे रुक के इंतजार करेगा देखेगा जब ट्रेन आएगी तो इसमें बहुत सारी और डिटेल्स हैं वहां पे ट्रेन चालक है यात्रीगण है अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं इत्यादि.
द सेम वे वी सी द लाइट ऑफ द सन डस इट मीन वी नो एवरीथिंग अबाउट द सन वी नो ऑल द फीचर्स ऑफ द सन वी सिंपली सी द सनलाइट बट विदिन द सनलाइट कम्स फ्रॉम अ सन प्लैनेट. And within the sun planet, there's a sun god.
तो हम जैसे सूर्य की रोशनी देखते हैं अगर कोई सोचे कि सूर्य की रोशनी ही सब कुछ है तो ऐसा नहीं है. सूर्य की रोशनी कहाँ से आ रही है सूर्य लोक से. और अगर कोई जाएगा सूर्य लोक में वहां पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं वहां सूर्य देवता है.
Therefore, we want to understand the absolute truth. We want to understand it in full. Vedanti tat tatvam vidam tatvam yajnanam advayam brahmiti paramatmiti bhagavaniti shabhyate. Learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance brahman paramatma and bhagavan.
To jo adhyatmik gyan mein parangat hote hain aise log param satya ko alag alag sakshatkar mein jante hain brahma paramatma aur bhagavan.
Shankaracharya gave importance to the sarvam kauvidam brahma. Everything is brahman. That is only just one part of the absolute truth. There's so much more to be known.
Shankaracharya ji ne is pe zyada dhyan kendrit kiya ki sarvam kalam brahma ki har jagah brahma upasthit hai parantu ye param satya ka sirf ek ansh hai.
Maybe if we simply cultivate this impersonal philosophy, we will become cold, we will lose feelings, our heart will become hard, we will not be able to experience the real bliss of Krishna consciousness.
Agar hum sirf is nirvishesh sakshatkar ki taraf dhyan de, to isse hamara hriday kathor banega, kyunki hum Bhagwan Krishna ke prati jo itne divya bhav hai, hum unko kho denge.
And some people, even they're chanting Hare Krishna, they're reading Bhagavad Gita, they're worshipping the deity of Krishna, but their goal is to become one. They're simply thinking that this is only the means to becoming one, to merging into the oneness.
So, वो भी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, कई लोग अर्चविग्रह की सेवा भी करते हैं, निर्विशेषवादी. परंतु जो उनका लक्ष्य है, वो एक बनना होता है.
So they are chanting, but they do not know the real glory of the holy name. They do not understand the real personality of the deity. They do not know the real message of Bhagavad Gita.
तो जो ऐसे लोग हैं, उनको असली महिमा क्या है हरि नाम की वो नहीं पता. अश्विग्रह जो परम पुरुषोत्तम भगवान है उनकी असली महिमा के बारे में नहीं पता. भगवत गीता का जो असली महिमा है उससे वो अज्ञात है.
So therefore Prabhupada was preaching Gauravani Pricharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Desatarine. Prabhupada was preaching this message of Lord Chaitanya to defeat impersonalism and voidism.
तो इसलिए शिला प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर रहे थे निर्विशेष और शून्यवाद को पराजित करने के लिए.
This impersonalism and voidism, nirvishesh and shunyavad, this is the cause of the whole world going to hell.
और निर्विशेष और शून्यवाद ये कारण है कि जिससे पूरा संसार नर्क की ओर जा रहा है.
But the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu can save them, can give them the greatest benefit.
परंतु चैतन्य महाप्रभु का संदेश उनको बचा सकता है, उनको सबसे बड़ा लाभ प्रदान कर सकता है.
Okay. Any question? Any argument?
किसी का कोई argument, प्रश्न?
Yes, Prabhu.
हरे कृष्ण वैदम प्रणाम. प्रभु जी हम अपनी भौतिक इच्छाओं को कैसे खत्म कर सकते हैं?
You can get rid of your material desires by engaging in the service of Krishna.
भगवान कृष्ण की सेवा में उनको लगाकर.
You have to let go of Maya and you let go by holding on to Krishna. You have to do more hearing and chanting, do more service for Krishna. Then you will forget your material desires.
तो माया को छोड़ना होगा और भगवान कृष्ण को पकड़ना होगा. ज्यादा से ज्यादा श्रवणम कीर्तनम करें और भगवान कृष्ण की सेवा को बढ़ाएं.
A devotee is so busy in the service of Krishna, he doesn't have time for material desires.
एक भक्त भगवान कृष्ण की सेवा में इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास समय नहीं होता भौतिक इच्छाओं के लिए.
Right? You just wake up in the morning, you start chanting, you go to the temple, Mangal Arati, you engage the full day in Krishna's service. There's no time for Maya.
आप सुबह उठते हैं, जप करते हैं, मंगल आरती के लिए आते हैं, पूरे दिन भगवान कृष्ण की सेवा में अगर व्यस्त रहते हैं तो माया के लिए समय ही नहीं है.
You just come and stay here in this center, you'll never get any problem with material desire.
तो आप यहाँ पर आके सेंटर में रहिए, बाहर आपको कोई समस्या नहीं आएगी इस भौतिक अस्तित्व से.
You want to get free of material desires, you just take up full service here in Krishna consciousness.
तो कृष्ण भावनामृत में आप पूरी सेवा को स्वीकार करो.
So Prabhupada established this Krishna consciousness movement to protect us from material desires.
शिला प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की हमारी सुरक्षा के लिए भौतिक इच्छाओं से.
If we just simply fully engage ourselves, use all the senses for the service of Krishna.
अगर हम अपने आप को पूर्ण रूप से व्यस्त रखें, सारी इंद्रियों को लगाएं भगवान कृष्ण की सेवा में.
Right? No meat, fish and eggs here, only Krishna prasadam.
यहाँ पे कोई मांसाहार अंडे मछली नहीं मिलता, सिर्फ कृष्ण प्रसाद.
And no time for Maya, only a lot of service.
और माया के लिए कोई समय नहीं, ज्यादा से ज्यादा सेवा.
Yeah, a lot of service to be done.
So, इतनी सारी सेवाएं हैं करने के लिए.
So many books to read, so many verses to memorize.
इतनी सारी है पुस्तकें हैं अध्ययन करने के लिए, इतने सारे श्लोक है याद करने के लिए.
So many rounds to chant.
इतनी सारी माला है जप करने के लिए.
So many prayers to memorize.
इतनी सारी प्रार्थनाएं हैं याद करने के लिए.
And service to be done as well.
और अलग अलग सेवा है.
Yes, Prabhu.
Is expressing Srila Prabhupada established 108 temples and is thanking you that all different disciples are now moving towards 1008 temples to establish. So this is how Lord Krishna appeared in ISKCON, right? Just like Bhishma Dev forced Krishna to break his promise. Similarly, Srila Prabhupada was forced by Krishna to come and spread Krishna consciousness movement here.
We can say Krishna's arrangement.
तो ये सब कृष्ण के प्रबंध हैं।
हरे कृष्णा महाराज, महाराज, I wanted to ask what is the destination and hope for impersonalist? How they can come into devotional service and what destination they get?
Okay, Hindi.
तो निर्विशेष जो मायावादी लोग हैं उनके लिए क्या उम्मीद है और उनकी क्या गति होती है?
So, destination for the impersonalists, if they're very successful in their impersonal practice, then there's a chance that they can get impersonal liberation, Sayujya Mukti, enter into the Brahma Jyoti. But they cannot remain there, they'll come back again to material world.
तो अगर निर्विशेषवादी अपने इस निर्विशेष अभ्यास में अगर सफल होते हैं तो उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु सदैव वहां पे नहीं रहते, वहां से उनका पतन होकर दोबारा भौतिक जगत में आते हैं।
What is their hope? Their hope is that somehow they may get the association of a devotee. Even in the impersonal Brahman, they may hear the devotees going back to Godhead chanting the holy name and they may be attracted to the Sankirtan movement.
तो उनका जो उम्मीद है वो है किसी प्रकार से उनको भक्तों का संग प्राप्त हो जाए, वो ब्रह्म ज्योति के अंदर लीन है और जो एक भक्त है उसी को पार करता हुआ भगवान के धाम जा रहा होता है भगवान के नामों का संकीर्तन करते हुए, तो हो सकता है अगर वो वहां पे उस संकीर्तन को सुने उससे शायद वो आकर्षित हो जाए।
So especially we try to give mercy to these people by the holy name, giving the holy name and giving prasadam and also engaging them somehow in Krishna's service.
तो हम उनको प्रचार करते हैं भगवान के दिव्य नाम प्रदान करके, कृष्ण प्रसाद देके और किसी ना किसी रूप से सेवा में लगा के।
They need that mercy. That's the mercy. Somehow we can engage. If you try to argue with them, discuss philosophy, sometimes we can waste a lot of time and get nowhere.
तो
but if we give them the holy name, we give them prasadam, or we get them to do some service, then they get some real benefit.
तो उनको कुछ कृपा चाहिए होती है, किसी न किसी प्रकार से उन्हें भक्ति के लाभ दें। अगर हम उनसे दर्शन पे चर्चा करेंगे तो अक्सर हम अपना बहुत सारा समय व्यर्थ गवा सकते हैं, तो किसी न किसी रूप में अगर आप उन्हें सेवा में लगाते हैं तो उनको असली लाभ पहुंचता है।
So Krishna consciousness movement is for that, to give them hope.
तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही उनके लिए है कि जो उनको उम्मीद दे,
अदरवाइज दे हैव नो होप,
अन्यथा उनके पास कोई उम्मीद नहीं है।
Yes,
all our questions are going to hell. How to understand this statement?
Well, because they don't want to do, if they take the impersonal philosophy, they can become offenders to the Lord. They can deride the form of the Lord and consider the Lord's form to be Maya and to be illusioned, and that so that's offensive to the form of Krishna.
तो वो किस प्रकार से कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं, भगवान कृष्ण के रूप को माया मानते हैं और इस अपराध की वजह से वो नरक जाते हैं।
Lord Chaitanya said mayavadi aparadi. So Lord Chaitanya is very concerned that these people are offenders to the Lord.
और चैतन्य महाप्रभु बहुत चिंतित रहते थे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो मायावादी है वो अपराधी है।
So what's the result of their offenses? They get some hellish destination.
तो कोई नारकीय गति उनको प्राप्त होती है।
हरे कृष्ण प्रभु, जो जो इंपर्सनलिस्ट है प्रभु जी, कम से कम एटलीस्ट वो भगवान को किसी ना किसी फॉर्म में तो पूज रहे हैं, मतलब लाइक उनसे तो बेटर हैं जो मटेरियल डिजायर में लगे हुए हैं, तो मतलब लाइक एटलीस्ट दे आर मतलब सर्विंग द गॉड एनी फॉर्म, मतलब किसी फॉर्म में तो भगवान को एटलीस्ट याद कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं उनका।
Worshipping in some form, they are doing something, so they are better than those who are engaged in material desires.
Yes, a little better. But they, if they are offensive, it's not good.
हो सकता है थोड़े से अच्छी स्थिति में, परंतु अगर वो अपराध कर रहे हैं तो नहीं.
If they deride the form of the Lord and they say that Krishna's form is illusion, it's all Maya, that God has no hands, God has no legs, God has no form, this is offensive.
तो अगर वो निर्विशेष गति की ओर प्राप्त करना चाहते हैं ठीक है, परंतु अगर इसके साथ वो अपराध करते हैं भगवान के रूप को माया मानकर, तो ये अपराध है.
If they're just simply Brahmagyanis, they simply don't know, but they just simply meditate on the impersonal Brahman, don't offend, then it's better than a materialist. But still, they're not properly situated. They have no engagement.
तो ब्रह्मवादी को भगवान के रूप का ज्ञान नहीं होता, तो वो भौतिक इच्छाओं में जो लोग व्यस्त हैं, उनसे बेहतर हैं. परंतु अगर मायावादी है, जो भगवान के रूप को माया मान रहा है, तो वो नहीं.
So the four Kumaras, you know, they were Brahmagyanis, but they became devotees because he got the aroma of the lotus feet of the Lord, the tulsi leaves and chandan from the lotus feet of the Lord entered their nostrils and they became purified, they became attracted to devotional service. And similarly, Sukadeva Goswami heard Srimad Bhagavatam and he gave up his attachment to the impersonal Brahman to become a devotee, to engage in devotional service.
तो जो चार कुमार हैं, वो पहले ब्रह्मवादी थे, परंतु जैसे उनके नाक में जो परम पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल है, चंदन है, उसकी सुगंध उनके नाक तक पहुंची, तो भक्त बन गए. सुखदेव गोस्वामी, जैसे उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनी, तो उन्होंने जो ब्रह्मवादी जो उनकी धारणा है तिनको त्याग के भगवान के भक्त बन गए.
But we never hear any devotee giving up devotional service to become an impersonalist.
परंतु हम ऐसा कोई उदाहरण नहीं सुनते कि भक्त ने भक्ति छोड़ के वो.
महाराज जो भगवान ये कहते हैं कि हम भगवान को वैसे ही जान पाते हैं जैसे वो हमें हमारे सामने रिवील करते हैं, हमारे हार्ट में रिवील करते हैं, तो ये भगवान की कुछ अपनी वो होती है कि वो हमको कैसे हमारे सामने अपने को व्यक्त करते हैं, मतलब उसी तरह से हम भगवान को जान पाते हैं.
Well, we understand Krishna through the heart. The external manifestation of Krishna in the heart is the spiritual master. You want to understand Krishna, you have to hear through the spiritual teachers. If you just simply depend on your own heart, you will never have a very accurate understanding of Krishna.
तो जो वो परमात्मा है, जो सब हृदय में स्थित है कृष्णा, तो वो बाह्य रूप में आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रकट होते हैं. तो अगर सिर्फ आप अपने हृदय पे ही आश्रित रहेंगे भगवान को समझने के लिए, तो धोखा खा जाएंगे.
We have imperfect senses. We're subject to illusion. We make mistakes. We cheat. We're conditioned souls. We cannot depend on simply the feeling of the heart.
तो इससे जो चार प्रकार की कमियां हैं, तो इसलिए सिर्फ हम अपने हृदय के भाव पे ही आश्रित नहीं रह सकते पूर्ण रूप.
Therefore, sadhu, shastra, guru, very important.
So Guru Sadhu Shastra, bahut mahatvapurna.
You want to understand God, you need these things. Hear from sadhus and read the scriptures. Have a spiritual master guide you. Then you can understand.
To sadhu aur guru se suniye, shastro ka adhyayan kijiye.
Okay, Hare Krishna. Thank you very much. Srimad Sri Chaitanya Charitamrita ki. Srila Prabhupada ki.
रिजिलेंस भक्ति विनाशक स्वामी महाराज की. तो हम एक बार महाराज का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की.